एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं।
जी हाँ, किताब का नाम है अनफेयर, द न्यू साइंस ऑफ क्रिमिनल इनजस्टिस। लेखक है एडम बेन फराडो।
अनफेयर मतलब अन्याय, नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है।
हाँ, और ये किताब सीधे सीधे जो अमेरिका की आपराधिक न्याय प्रणाली है ना, उसकी जड़ों पर ही सवाल खड़ा कर देती है।
बिल्कुल, और ये तर्क देती है कि ये पूरी प्रणाली इंसानी मनोविज्ञान और व्यवहार की, आप कह सकते हैं, गलत समझ पर आधारित है।
और देखिए, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। इसकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया भर में, शायद हमारे यहाँ भी, न्याय प्रणालियां कैसे इंसानी सोच की जो सीमाएं हैं,
जैसे पूर्वाग्रह।
हाँ, जैसे हमारे अनजाने पूर्वाग्रह या फिर याददाश्त की कमजोरियां, इनसे कैसे प्रभावित होती हैं।
सही कहा, यह हमें अपने सिस्टम को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये एक तरह से आईना दिखाती है कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी शायद है नहीं।
तो चलिए थोड़ा लेखक के बारे में जानते हैं। एडम बेन फराडो ये कौन है?
एडम बेन फराडो वो ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो सिर्फ कानून के प्रोफेसर नहीं है।
अच्छा,
हाँ, उनकी खासियत यह है कि वो कानून और मनोविज्ञान, इन दोनों विषयों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ये लॉ स्कूल और हार्वर्ड जैसी जगहों से पढ़ाई की है।
ओह, तो अकादमिक तौर पर तो बहुत मजबूत पृष्ठभूमि है।
बिल्कुल, पर उनकी सबसे अलग बात यह है कि वो सिर्फ कानूनी दांव पेच या धाराओं की बात नहीं करते। वो मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस, मतलब दिमाग कैसे काम करता है, उस रिसर्च को कानूनी प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं।
ये तो बड़ा अनूठा मेल है, मतलब कानून को विज्ञान की कसौटी पर कसना।
हाँ, वो यही करते हैं। वो देखते हैं कि कानून जो मानता है इंसान के बारे में कि वो तर्क से चलता है, सोच समझकर फैसले लेता है, क्या विज्ञान भी यही मानता है?
और जाहिर है, किताब का नाम देखते हुए लगता है कि जवाब नहीं में है।
बिल्कुल, उनका मकसद सिर्फ कमियां बताना नहीं है, बल्कि वो विज्ञान पर आधारित समाधान भी सुझाते हैं। ये चीज उन्हें खास बनाती है।
तो अब आते हैं किताब पर। इसका मूल विचार क्या है, सार क्या है?
देखिए, किताब का सार ये है कि ये दिखाती है कैसे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, मतलब हमारे मन के झुकाव, और इंसानी व्यवहार की जो गलत धारणाएं हैं,
जो हम मानकर चलते हैं कि लोग ऐसे ही होते हैं।
हाँ, वो गलत धारणाएं आपराधिक न्याय के हर स्टेज पर, मतलब पुलिस जांच से लेकर सजा सुनाने तक, कैसे अन्याय पैदा करती हैं।
तो दिक्कत सिर्फ कुछ बुरे लोगों या भ्रष्टाचार की नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बेन फराडो का मुख्य तर्क यही है कि समस्या ज्यादा गहरी है। पूरी प्रणाली की नींव ही एक तरह से गलत है।
किस तरह की गलत नींव?
रैशनल है, लॉजिकल है, जबकि विज्ञान हमें बार बार बता रहा है कि हमारे ज्यादातर फैसले, हमारे रोजमर्रा के निर्णय भी अक्सर अनजाने पूर्वाग्रहों, अनकॉन्शियस बायसेस और हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं।
और ये अनजाने होते हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता।
हाँ, यही तो मुश्किल है। हमें लगता है हम निष्पक्ष हैं, पर हमारा दिमाग पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल खेल रहा होता है।
किताब में शायद कोई उदाहरण भी दिया है इसे समझाने के लिए?
हाँ, उन्होंने एक काल्पनिक किरदार बनाया है, कैमरन क्लार्क। उस पर हत्या का झूठा आरोप लगता है।
अच्छा।
और उसके केस के जरिए किताब दिखाती है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति सिस्टम की छोटी छोटी खामियों का शिकार हो सकता है, मतलब एक के बाद एक चीजें कैसे गलत होती जाती हैं।
ये तरीका कहानी को समझने में मदद करता होगा। तो किताब का मकसद सिर्फ आलोचना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समझ के आधार पर सुधार का रास्ता दिखाना भी है।
चलिए, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब के अलग अलग हिस्सों या अध्यायों पर बात करते हैं। पहला अध्याय जांचकर्ताओं और अदृश्य पूर्वाग्रह के बारे में है।
हाँ, द इन्वेस्टिगेटर और द इनविजिबल बायस। इसमें बेन फराडो बताते हैं कि जांच करने वाले अधिकारी, चाहे वो कितने भी नेकनियत क्यों ना हो, अनजाने में कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं।
कन्फर्मेशन बायस, ये क्या होता है आसान भाषा में?
मतलब एक बार अगर उन्हें किसी पर शक हो गया ना, तो फिर वो उन सबूतों या बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो उनके शक को पुख्ता करती हैं।
अच्छा।
और जो बातें शक के खिलाफ जाती हैं या किसी और दिशा में इशारा करती हैं, उन्हें वो या तो नजरअंदाज कर देते हैं या कम महत्व देते हैं।
इसे टनल विजन भी कहते हैं शायद, जैसे एक सुरंग में सिर्फ आगे का दिखना।
बिल्कुल सही, एकदम वही, जैसे कैमरन क्लॉक के केस में होता है। एक बार शक हुआ तो सारी जांच उसी एक दिशा में मुड़ जाती है, बाकी रास्ते बंद हो जाते हैं दिमाग में।
अरे बाप रे, तो बहुत खतरनाक है। मतलब अच्छा अफसर भी अनजाने में गलती कर सकता है।
हाँ, यही इस पूर्वाग्रह की दिक्कत है।
अच्छा, जांच के बाद आते हैं गवाहों पर, द विटनेसेस और द मैलिएबल माइंड, यानी लचीला दिमाग। मुझे तो हमेशा लगता था कि जिसने अपनी आंखों से देखा उसकी बात तो पत्थर की लकीर होती है।
हाँ हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये किताब तोड़ती है। बेनफुराडो साफ कहते हैं, हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है।
नहीं है,
नहीं। वो तो हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो वो दोबारा बनती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है, और इस प्रक्रिया में वो बदल सकती है।
सच में? मतलब मैं जो घटना आज याद कर रही हूँ वो शायद कल थोड़ी अलग तरह से याद आए।
बिल्कुल। तनाव, या मान लीजिए घटना के समय कोई हथियार मौजूद था, तो सारा ध्यान उस पर चला जाता है, वेपन फोकस। या किसी दूसरी जाति या नस्ल के व्यक्ति को पहचानने में ज्यादा गलती होती है, ये सब चीजें याददाश्त को बिगाड़ सकती हैं।
और पुलिस के सवाल पूछने का तरीका?
हाँ, वो भी। अगर सवाल ऐसे पूछे जाएं जो जवाब को सुझा रहे हों तो भी याददाश्त बदल सकती है। किताब में जेनिफर थॉम्सन रोनाल्ड कॉटन केस का जिक्र आता है।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
जहाँ एक महिला ने पूरे आत्मविश्वास से एक बेगुनाह आदमी की पहचान की थी और वो सालों जेल में रहा, बाद में डीएनए से सच्चाई सामने आई।
ये तो डराने वाली बात है। मतलब चश्मदीद गवाह पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल नहीं। उनकी याददाश्त बहुत लचीली होती है।
इसके बाद आता है संदिग्ध और इकबालिया बयान का मामला, द सस्पेक्ट और द कन्फेशन। ये समझना तो और भी मुश्किल लगता है कि कोई बेगुनाह इंसान जिसने कुछ किया ही नहीं वो जुर्म कबूल क्यों कर लेगा।
हाँ, ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है, पर बेनफुराडो बताते हैं कि पुलिस पूछताछ की कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे अमेरिका में रीड टेक्निक बहुत चलती है। वो संदिग्ध पर इतना जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती हैं, घंटों अकेले बिठाना, सोने ना देना, बार बार दोषी कहना, कभी कभी झूठे सबूतों का झांसा देना।
अच्छा,
इंसान का मनोबल टूट जाता है, वो बस उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है।
तो वो दबाव में आके हाँ कह देता है?
हाँ, खास तौर पर अगर वो व्यक्ति कमजोर है, जैसे कोई किशोर है, या मानसिक रूप से कोई परेशानी है, या बहुत थका हुआ या डरा हुआ है। वो सोचते हैं कि कबूल कर लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। कैमरन क्लार्क के साथ भी ऐसा ही होता है।
तो मतलब इकबालिया बयान भी हमेशा सच नहीं होता?
बिल्कुल। इसलिए किताब कहती है कि पूछताछ के बेहतर तरीके अपनाने चाहिए, जैसे पीस मॉडल, जो जानकारी निकालने पर जोर देता है, दबाव बनाने पर नहीं। और पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
ये जरूरी लगता है। अच्छा, तो जांच हो गई, गवाह हो गए, इकबाल हो गया। आगे किताब लाई डिटेक्टर और वकीलों पर भी बात करती है।
हाँ, द लाई डिटेक्टर और द लॉयर्स। लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ, जिससे फिल्मों में बड़ा चमत्कारी दिखाया जाता है।
हाँ, लगता है सच झूठ सब पता चल जाता है।
बेनफुराडो कहते हैं ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, ये मशीन झूठ नहीं पकड़ती।
तो क्या पकड़ती है?
ये शरीर में होने वाले बदलाव मापती है, धड़कन, सांस, पसीना। अब ये बदलाव तो घबराहट या डर से भी हो सकते हैं।
हाँ, अगर कोई बेगुनाह भी डरा हुआ हो
तो मशीन दिखा देगी कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए भरोसे लायक नहीं है।
अच्छा, और वकील, सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील, उनका क्या रोल है इस सब में?
देखिए, वो भी सिस्टम का हिस्सा है और उन पर भी दबाव होते हैं। सरकारी वकीलों पर केस जिताने का प्रेशर होता है। और जो पब्लिक डिफेंडर होते हैं, यानी सरकारी खर्चे पर बचाव करने वाले वकील, उन पर अक्सर काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि वो हर केस को पूरा समय और ध्यान नहीं दे पाते।
और प्ली बार्गेनिंग का भी जिक्र था शायद।
हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका में 90-95% केस सुनवाई तक पहुंचते ही नहीं, वो पहले ही प्ली बार्गेन में निपट जाते हैं। मतलब अभियुक्त थोड़ी कम सजा के बदले जुर्म कबूल कर लेता है।
तो सच्चाई पता लगाने का मौका ही नहीं मिलता।
बहुत कम मामलों में। सिस्टम जल्दी केस निपटाने पर ज्यादा जोर देता है।
ये तो पूरा सिस्टम ही हिल गया लगता है। अगर मामला कोर्ट तक पहुंच भी जाए तो फिर जूरी और जज, क्या वो निष्पक्ष होते हैं?
द जूरी और द जज। किताब कहती है वो भी इंसान है। जूरी के फैसले इस पर निर्भर कर सकते हैं कि अभियुक्त दिखने में कैसा है, वकील कहानी कितनी अच्छी सुनाता है।
कहानी, सबूत नहीं।
जूरी अक्सर सबूतों को जोड़कर अपने मन में एक कहानी बना लेती है, स्टोरी मॉडल, और फिर उस कहानी के हिसाब से फैसला करती है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।
और जज, उन्हें तो कानून का पूरा ज्ञान होता है, वो तो निष्पक्ष होंगे।
माना तो यही जाता है, पर रिसर्च बताती है कि जज भी अनजाने पूर्वाग्रहों से अछूते नहीं हैं, बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि जज का फैसला इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि उन्होंने लंच किया है या नहीं।
क्या सच में? भूखे होने से फैसले पर असर?
हाँ, भूखे जज ज्यादा सख्त फैसले दे सकते हैं, ऐसा पाया गया है। या फिर मौसम कैसा है, या उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम मैच हारी है या जीती।
अरे, ये तो अविश्वसनीय लगता है।
हाँ, ये छोटी छोटी अप्रासंगिक लगने वाली चीजें भी अनजाने में उनके दिमाग पर असर डाल सकती हैं।
तो फिर सजा और सुधार के बारे में क्या? द पनिशमेंट और द रिफॉर्म, क्या लंबी लंबी कड़ी सजाएं देने से अपराध रोकते हैं?
ये एक और बहुत बड़ी धारणा है जिस पर किताब सवाल उठाती है। बेन फुराटो कहते हैं कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि कड़ी सजाएं अपराध रोकने में बहुत कारगर होती हैं। डिटोरेंस इफेक्ट।
लेकिन हमें तो यही लगता है कि डर से लोग अपराध नहीं करेंगे।
लगता है, पर डेटा हमेशा इसका समर्थन नहीं करता। कई बार जेल का माहौल अपराधियों को सुधारने के बजाय और पक्का बना देता है।
तो फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ सजा देना ही काफी नहीं है।
लेखक कहते हैं कि हमें पुनर्वास रिहैबिलिटेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और रेस्टोरेटिव जस्टिस का भी जिक्र करते हैं।
रेस्टोरेटिव जस्टिस, ये क्या है?
इसमें कोशिश होती है कि सिर्फ अपराधी को सजा ना दी जाए, बल्कि पीड़ित, अपराधी और समाज मिलकर उस नुकसान की भरपाई का रास्ता निकालें और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें।
ये तो अलग नजरिया है।
हाँ, और बेन फुराटो कई ठोस सुधार भी सुझाते हैं, जैसे डबल ब्लाइंड लाइनअप, जिसमें पहचान कराने वाले पुलिस अफसर को भी नहीं पता होता कि असली संदिग्ध कौन है।
अच्छा, ताकि वो इशारा ना कर सके।
बिल्कुल, और पूरी पुलिस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग, ज्यूरी को बेहतर समझाने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल, सजा देने में समानता लाने के लिए डेटा का इस्तेमाल, ये सब विज्ञान पर आधारित सुझाव हैं।
वाह, तो ये किताब सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, रोशनी की तरफ भी इशारा करती है। इस पूरी बातचीत से कुछ बड़े संदेश या थीम उभर कर आ रहे हैं। पहला तो यही कि हम अपनी तर्कसंगतता को लेकर भ्रम में हैं।
हाँ, तर्कसंगतता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ रैशनैलिटी। हम सोचते हैं हम लॉजिक से चलते हैं, पर असल में भावनाएं और पूर्वाग्रह हमें ज्यादा चलाते हैं।
दूसरा, याददाश्त कोई रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक निर्माण है, मेमोरी एस कंस्ट्रक्शन। ये हर बार याद करने पर बदल सकती है।
बिल्कुल, किसी पुरानी घटना को दो लोग कितने अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, ये हम रोज देखते हैं।
तीसरा, अनजाने पूर्वाग्रह की शक्ति, पावर ऑफ अनकॉन्शियस बायस। ये छुपके से हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, चाहे वो नस्ल, जाति, वर्ग या सिर्फ पहनावे को लेकर हो।
हाँ, और भारत में तो ये पूर्वाग्रह बहुत गहरे हैं। हमें लगता हम नहीं करते, पर कहीं ना कहीं वो होते हैं।
चौथा, कड़ी सजा से अपराध रुक जाएगा ये जरूरी नहीं। फेलियर ऑफ डेटरेंस, हमें अपराध की जड़ों और रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना होगा।
सही कहा। और पांचवा, समस्या व्यक्तिगत नहीं प्रणालीगत है, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स। अच्छे इरादे वाले लोग भी एक दोषपूर्ण सिस्टम में फंसकर अन्याय कर सकते हैं,
इसलिए सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है।
हाँ, और छठा, सबूत आधारित सुधार की आवश्यकता, नीड फॉर एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म। परंपरा या अंदाजे पर नहीं, वैज्ञानिक शोध के आधार पर नीतियां बनानी होंगी।
इस किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ यादगार विचार, उन पर बात करें।
जरूर, एक विचार जो मुझे बहुत टकराया वो ये कि न्याय प्रणाली रेत की नींव पर बनी है इंसानी व्यवहार के बारे में हमारी सहज पर गलत मान्यताओं पर।
मतलब पूरी बुनियादी कमजोर है।
हाँ, और दूसरा, याददाश्त वाला, याददाश्त एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हम उसे बदलते हैं।
ये गवाहों पर हमारी निर्भरता को कटघरे में खड़ा करता है।
बिल्कुल। फिर एक चेतावनी है, न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन ये भ्रम है कि हमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है।
मतलब अगर हम मान लें कि सब ठीक है तो सुधार की कोशिश ही बंद कर देंगे। आत्मसंतुष्टि खतरनाक है।
सही। और आखिरी, पूर्वाग्रह वाला, पूर्वाग्रह सिस्टम में कोई खराबी बग नहीं है, ये मानव अनुभूति की एक विशेषता है।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब ये है कि पूर्वाग्रह हमारे सोचने के तरीके का हिस्सा है।
हाँ, उन्हें पूरी तरह मिटाना शायद नामुमकिन हो, पर हम ऐसे सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो उनके असर को कम से कम करें।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, अगर हम कभी किसी मामले में जूरी सदस्य बनते हैं या बस एक जागरूक नागरिक के तौर पर सोचते हैं, तो हमें गवाहों की बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए।
झूठे इकबाल की संभावना को भी समझना चाहिए।
बिल्कुल, और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हमारे अपने पूर्वाग्रह तो काम नहीं कर रहे।
और निजी जिंदगी में
दूसरों के बारे में फटाफट राय बनाने से बचना चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या हालात हो सकते हैं।
अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना शायद पहला कदम है।
सही कहा। और सामाजिक स्तर पर हमें सिर्फ सजा सजा चिल्लाने के बजाय अपराध की रोकथाम और सुधार के उन तरीकों पर बात करनी चाहिए जो वैज्ञानिक रूप से कारगर साबित हुए हों।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि न्याय सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं मिल जाता, हमें इंसान होने की सीमाओं को मानना पड़ेगा।
हाँ, और अपने सिस्टम को उसी समझ के हिसाब से बदलना होगा।
मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जज जैसे इतने प्रशिक्षित और अनुभवी लोग भी भूख या मौसम जैसी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। ये दिखाता है कि पूरी तरह निष्पक्ष होना कितना मुश्किल है।
और मेरे लिए वो याददाश्त वाला पहलू सबसे चौंकाने वाला था कि हमारी मेमोरी कितनी अविश्वसनीय हो सकती है और फिर भी हमारा पूरा कानूनी ढांचा उस पर कितना निर्भर करता है।
हाँ, ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है।
अभी सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम सच में एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं या बस पुरानी लीक पीट रहे हैं। एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ।
अगर हमारी न्याय प्रणाली मानव मनोविज्ञान की गलत समझ पर ही आधारित है तो क्या हमें इसे सिर्फ थोड़ा ठीक ठाक करने की जरूरत है या फिर इसे विज्ञान की नई समझ के आधार पर पूरी तरह से दोबारा डिजाइन करने की।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।